ये आकाशवाणी है। अब आप रवि कपूर से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अहमदाबाद में विमान हादसे पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और बचाव कार्यों में जुटे अधिकारियों तथा अन्य लोगों से मिलकर स्थिति का जायजा लिया। इससे पहले कल सुबह श्री मोदी ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की। श्री मोदी ने दुर्घटना में बचे एकमात्र यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश से अस्पताल में भेंट की।
जब टेकऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया हो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ, प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेकऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस्ट दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी, हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे वहां लैंड हुई थी, वहां थोड़ा पेस भी था। जैसे मेरा डोर टूटा ना सब तो फिर मैं निकल गया उधर।
सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने बताया है कि घायलों के स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।
पूरे आरोग्य विभाग ने और सिविल हॉस्पिटल ने सारे डॉक्टर ने मिलकर वो इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल किया। करीबन 60 लोग आए थे उस टाइम पे, जिसमें से काफी लोग ओपीडी बेस पे, जिनको थोड़ी बहुत इंजरी थी उनको डिस्चार्ज कर दिया गया सिविल हॉस्पिटल सबसे नजदीक। और ये सरकार की सबसे बड़ी व्यवस्था है जिसमें लोगों को इमीडिएटली सारवार दी गई।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि वे अहमदाबाद विमान हादसे के संबंध में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी, पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रंगेल और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के संपर्क में हैं। उन्होंने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद निवारक उपाय के रूप में जेनेक्स इंजन से लैस बोइंग 787-8 और 787-9 ड्रीमलाइनर विमानों के अतिरिक्त सुरक्षा निरीक्षण के लिए एयर इंडिया को निर्देश दिया है। DGCA ने कहा कि संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय करके तत्काल प्रभाव से निरीक्षण किया जाना चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार जल्द ही नई आबकारी नीति लाने जा रही है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अच्छी शराब की उपलब्धता सुनिश्चित करना और बिक्री तथा वितरण प्रणाली को पारदर्शी, आधुनिक और जवाबदेह बनाना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल बताया कि नई नीति में आबकारी प्रणाली में कई सुधार किए जाएंगे, जिसमें शराब की गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण, बिक्री प्रणाली का डिजिटलीकरण, अवैध बिक्री पर सख्त कार्रवाई और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना शामिल है। ईरान ने कल ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के अंतर्गत इसराइल पर मिसाइल हमले किए। ये हमला ईरान के परमाणु स्थलों पर घातक इजरायली हवाई हमलों और शीर्ष सैन्य कमांडरों की हत्या के विरोध में किया गया। इसराइल की सेना ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने चेतावनी दी थी कि इसराइल युद्ध शुरू करेगा तो ईरान कड़ा प्रहार करेगा। इस बीच कल इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति के बारे में फोन पर जानकारी दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री नेतन्याहू के साथ बातचीत में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर बल दिया। इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भी विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर को फोन पर मौजूदा घटनाक्रम के बारे में अवगत कराया। आयुष मंत्रालय आज नई दिल्ली में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर आधारित हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन में बहरीन, अमरीका, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया सहित 4 से अधिक देशों के विशेषज्ञ भाग लेंगे। उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जम्मू, हरियाणा और मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय निशानेबाज सुरुचि सिंह ने म्यूनिख में कल महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में जीत के साथ ISSF विश्व कप की इस स्पर्धा में लगातार 3रा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।